ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय वीणा दीदी जी पधारे हैं। आज की इस क्लास में हम आपका एक हाथ की ताली से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कौन कौन भाई बहन है जो फर्स्ट टाइम वीणा दीदी को मिल रहे हैं? अच्छा, सभी अधिकतर है। आप सिरसी कर्नाटक से हमारे बीच में पधारे हैं। हम गुवाहाटी वाले बहुत भाग्यशाली हैं। शांतिवन में बड़ी दीदियों की भट्टी चल रही है, तो उनमें से कुछ बहनें हमारे बीच में आकर हमें बहुत सुंदर क्लास कराकर हमें लाभान्वित कर रहे हैं। वीणा दीदी भट्टी में भी आए थे, उससे पहले ज्ञान सरोवर में वुमन कॉन्फ्रेंस चली, अभी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो सभी विंग्स में आप एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं एक वक्ता के रूप में। आज हमें भी आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वीणा दीदी जी का फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय वीणा दीदी जी की बहुत छोटी उम्र थी, 15 वर्ष की जब आपकी आयु थी, तभी आप इस ईश्वरीय ज्ञान में आए और आपने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की। सोशियोलॉजी में आपने MA किया और उसके बाद संपूर्ण रूप से आप सेवाओं में, बाबा की ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हो गए। आपको जो बाबा हमें मुरली में कहता है गीता का भगवान सिद्ध करना है, ये बहुत बड़ा बीड़ा आपने उठाया है। भारत के अनेक स्थानों पर जाकर गीता का भगवान कौन है इस बात को आप गीता के ही ज्ञान से बहुत सुंदर रीति सिद्ध करते हैं। आप संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी भी हैं, संस्कृत के जो भी श्लोक के आपको कंठस्थ है, और ये बहुत प्रभावशाली रहता है जब आप संस्कृत में श्लोक सुनाकर और उसको बहुत अच्छा बाबा के ज्ञान से लोगों तक ट्रांसलेट करके पहुंचाते हैं। आपके प्रोग्राम्स DD कनाडा और भी ETV कनाडा पर आपके कन्नड़ में प्रोग्राम्स आते रहते हैं। आपने भारत के अनेक स्थान, बेंगलोर, राजस्थान, बॉम्बे, दिल्ली, अनेक शहरों में जाकर श्रीमद् भगवत गीता के क्लासेस कराए हैं। ये शिव संदेश सभी आत्माओं तक पहुंचाया और अनेक आत्माओं को परमात्मा से आपने जोड़ा है। तो कुछ शब्द मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, कभी गाइड बनकर कभी वक्ता बनकर आपने किया है मार्गदर्शन सभी का। अपनी मधुर वाणी से हरा है जिन्होंने हृदय प्रभु का। भाग्यशाली है हम जिन्होंने पाया है समय आपका, जिन्होंने पाया है क्लास आपका। आदरणीय दीदी जी से बहुत सुंदर विषय पर अभी हम क्लास सुनने वाले हैं, फरिश्ता बनने की विधि।
ओम शांति। आप सभी बाबा की स्वर्धान भूमि में बैठे हैं। इस जगह से हम सबकी बहुत सारे बचपन के और बाप दादा से जुड़ी बहुत यादें जुड़ी हैं। इस ईश्वरीय मार्ग में सौभाग्य से हम जो सफर तय कर रहे हैं, इस सफर में इस पांडव भवन का, मेडिटेशन हॉल का बहुत बड़ा योगदान है। यहां अभी भी अगर आप शांति से बैठे, हाँ हमने साकार में बाबा को तो देखा नहीं है, लेकिन बाबा की कदमों की आहट अभी भी हमें सुनने को मिलता है। लगता है कि बाबा हमारे आसपास है, ऐसे लगता है कि बाबा हमें देख रहा है और हमें मार्गदर्शन भी कर रहा है। कई बार 100 से ज्यादा बार हम यहाँ आ चुके हैं, फिर भी जब हम पांडव भवन के गेट के अंदर आते हैं, जैसे ही कदम रखते हैं, तो ये जो यहाँ पर लिखा है, आओ बच्चे पधारो आपका घर है, ये शब्द नहीं लगते हैं। लगते हैं सच में बाबा बाह पसारे यहाँ खड़े हैं, इस ईश्वरीय मार्ग पे आने के लिए पांडव भवन का मतलब यहाँ एक घर का वातावरण, जैसे कि बाबा के हम मुरली भी सुनते हैं, बाबा ने परसों भी कहा है कि बाबा कोई संस्था स्थापन करने नहीं आए हैं, बाबा एक परिवार स्थापन करने आए हैं, जिस परिवार में हर एक व्यक्ति मूल्यवान है और हर एक व्यक्ति विशेष आत्मा है, जैसे लौकिक परिवार में होता है। इसलिए और अभी जुलाई मास चल रहा है, मीठी दीदी की यादें, हमारी बड़ी दीदी जो थी, जब हम आए तो बहुत सारी बातें हमने दीदी से सीखी, तो उनकी स्मृति दिन इन्हीं दिनों में आता है जुलाई में, तो इन सब यादों को लेके हम आप सभी इस प्रांगण में बैठे हैं। आजकल जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसे भी नीचे बहुत अच्छी क्रिएटिव बट्टी चल रही है बड़ी बहनों की, उसका भी असर समझो, या कुछ एक साल से हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस ओर हमारा अटेंशन है कि हाँ, मैं हंसते हुए सदैव एक बात याद करती हूँ, हम कोई सेंटर चलाने इंचार्ज बनने आए नहीं थे, हम जब समर्पित हुए पूरे परिवार को अगेंस्ट, उनके विरोध में भी हम समर्पित हुए, तो कारण ये था कि हर जीवन कोई न कोई व्यक्ति के लिए हमने पूरा समय व्यतीत किया है, कभी पति के लिए तो कभी बच्चे के लिए तो कभी माता के लिए तो कभी किसी के लिए, है ना। लेकिन संगम के यही सुहाने कुछ समय है जो हम भगवान के काम आ सकते हैं। 84 जन्म लिए, हर जन्म में मनुष्य के ही काम आए, भले वो देवी हो देवता हो, मनुष्य के ही काम आए, लेकिन संगम के ही ये सुंदर समय है, इस समय में हम भगवान के काम आ सकते हैं, तो हमने सोचा कि हम भगवान के काम आएंगे, पूरी जिंदगी भगवान की ही यादों में हम व्यतीत करेंगे, इसीलिए हमने इस राह को चुना। जैसे कहते हैं ना कि आए थे नमाज पढ़ने लेकिन मस्जिद सिर पे गिर गया, आए थे नमाज पढ़ने, हम कोई मस्जिद उठाने नहीं आए थे, हमारा लक्ष्य वो था भी नहीं, लेकिन ड्रामा कहो या मीठे बाबा का विश्वास कहो हमारे ऊपर, तो बाबा ने ये जिम्मेवारी रख दी, सेवा संभालो। बाद में हमने खुशी से ये भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि जीवन का एक भाग है, चार सब्जेक्ट में से सेवा भी एक सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो जब हम बैठ के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, तो लगता है कुछ छूट रहा है। बहुत सेवाएं कर ली, बहुत भाषण कर लिए, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस कर लिए, ये कर लिए वो कर लिए, लेकिन अपने लिए हम बहुत कम समय दे पाए, जो जितना देना चाहिए था, ऐसे कि नहीं दिए, लेकिन जितना देना चाहिए था, जिस लक्ष्य से आए थे, उतना हम दे नहीं पाए। जब ये मन में चिंतन शुरू हुआ, तो उसके बाद हमने सोचा कहाँ गलती हुई, गलती कहाँ हुई। जैसे लौकिक वाले भी करते हैं, कमाने पर बहुत अटेंशन रखते हैं, शरीर पर ध्यान नहीं रखते, संबंधों पर ध्यान नहीं रखते, जब शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है, संबंध बिखर जाते हैं, तब सोचते हैं हमने क्या गलती की। लेकिन थैंक्स टू बाबा, बहुत देरी नहीं हुई हमें, थोड़ा सा हम अपने आप को पीछे जाके सोचने के लिए बाबा ने भी इशारा दिया, तो समझ में ये बात आई, हाँ सेवा तो जरूरी है, ब्राह्मण जीवन का खुशी का एक रास्ता है, हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, है ना। लेकिन सेवा इज नॉट एवरीथिंग, सेवा ही सब कुछ नहीं है, उससे भी बढ़कर कुछ है। तो इसके लिए लगा कि जो आज की सब्जेक्ट हमने लिया है, बाबा की बहुत सारी बातें हैं। अभी हमारे भट्टी में भी टॉक शो हुआ तो हमने यही बात वहां पर ये स्पष्ट किया कि साकार मुरलियों में ये फरिश्ता शब्द ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है। आपने साकार मुरलियां तो सुनिए, उसमें सूक्ष्म देवता, बाबा सूक्ष्म देवता की बातें करता है, लेकिन फरिश्ता शब्द कभी कभी आ जाता है। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में शायद ही कोई ऐसी मुरली हो जिसमें बाबा फरिश्ते के बारे में ना कहा हो। सीजन में, पहले सीजन में 25-30 मुरलियां चलती थी, तो सारे मुरलियों में कम से कम 1/3 ऑफ द मुरली, माना 10 मुरलियों में तो कम से कम बाबा ने फरिश्ता का जिक्र किया है। तो मैंने सोचा कि ये क्यों है ऐसे, जो साकार में नहीं कही बातें अव्यक्त में इतनी इम्पोर्टेंस दे के बाबा ने कही है। तो आपको क्या लगता है, उन दिनों जो बाबा पुरुषार्थ करते थे, ब्रह्मा बाबा द्वारा करा के एक एग्जाम्पल सेट किया बाबा ने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, है ना, बाबा पहला व्यक्ति है जो पुरुषार्थ के रास्ते पे आगे निकला। तो अव्यक्त बाबा जैसे अव्यक्त हो गए, ब्रह्मा बाबा एक एग्जाम्पल बने, तभी शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा जैसा बनने की हमें प्रेरणा देने लगे। बाप समान शब्द तो कई बार सुनते हैं, लेकिन बाप समान बनने की विधि में हम देखो, बाप समान में भी दो है, एक ब्रह्मा बाप समान बनना है, एक शिव बाबा समान बनना है ना, दोनों समान, क्योंकि हमें तो जाके परम धाम में बैठ नहीं जाना है, जाना भी है और यहाँ आना भी है। तो दोनों को हमें सामने रखते हुए बाप दादा हमारे सामने लक्ष्य है। तो कुछ एक दो डेफिनेशन हम सुनेंगे जो अव्यक्त मुरलियों में फरिश्ते के बारे में बाबा ने कहा। अक्सर जो बाबा कहते हैं, फरिश्ता माना फर्शवासी नहीं अर्शवासी। अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं, फर्श धरती के वासी नहीं है, अर्श माना अंतरिक्ष में रहने वाले, माना जिन देवताओं की हम बातें सुनते थे भक्ति मार्ग में, जैसे कि कहानियों में नल दमयंती की, स्वयंवर की बातें आती हैं, तो वहां पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिखाते हैं कि दमयंती को कंफ्यूज हो गया कि चार पांच नल बैठे थे, नल महाराज पांच, तो उसको कंफ्यूज हो गई वो किसको वरमाला डालूं। तो बाद में उसको ये याद आया कि नल तो मनुष्य है, नल महाराज मनुष्य है, ये शायद जो दिख रही है ये कोई देवताओं का चाल है। अगर वो देवता नल महाराज के रूप में बैठे हैं तो उनके पैर धरती पर लगे नहीं होंगे, एक ही नल महाराज का पैर धरती पर लगा होगा, उसी को मैं वरमाला डालूंगी। पांच जो बैठे थे उसमें चार देवता थे, एक नल महाराज थे, तो उसने पहचान लिया जो नल महाराज थे वो तो धरती पे पैर लगा के बैठे थे और दो चार देवता बैठे थे उनके पैर ऊपर थे। ऐसी एक कहानी बचपन से हम सुने तो बहुत वंडर लगता था, अजीब लगता था, फिर देवता चलते कैसे होंगे जब पैर धरती पे लगता ही नहीं, तो चलते कैसे होंगे। तो बड़े हमारे दादाजी सभी कहते थे वो चलते नहीं है उड़ते हैं, देवता चलते नहीं है उड़ते हैं। अरे हमको तो बहुत हंसी आती थी, जो चलते ही नहीं है वो हमारे दुनिया के हो ही नहीं सकते। हम कहते थे उन दूसरी दुनिया के लोगों की हमें बातें नहीं सुननी है। हम दादाजी को कहते थे दूसरी दुनिया के लोगों की कहानियां हमें नहीं सुनाओ, हमारी दुनिया की सुनाओ ताकि हम कुछ सीख सके। लेकिन हमको ये पता नहीं था वो भी हमारी ही दुनिया है जो हमें, जहां हमें पहुंचना है, वो कोई अलग दुनिया नहीं है, इसी दुनिया का एक पार्ट एंड पार्ट है वो। जब बाबा के इस ज्ञान के मार्ग पे चले, देखो बहुत सुंदर, फर्शवासी नहीं है अर्शवासी है। अर्शवासी मना देह में है, ऐसे नहीं कि देह छोड़ के पूरा परमधाम चले गए, ये भी नहीं है, और देह में जकड़े हुए भी नहीं है, फंसे हुए भी नहीं है, कितना सिंपल। दूसरा बाबा कहते फरिश्ता वो है जिसका सर्व रिश्ते एक बाप से है, सर्व रिश्ते एक बाप से, या यूं कहे सब रिश्तों से जो परे है वो है फरिश्ते। दुनिया के सब रिश्तों से जो परे हैं वो है फरिश्ते। क्या लगता है, इज इट पॉसिबल, संभव है? संभव है? संभव है। कैसे है वो बाबा आगे बताते हैं। जो मैंने कहा सर्व रिश्ते एक से, वो एक अलग हो गया। दूसरे बाबा का डेफिनेशन हम याद करेंगे कि सर्व रिश्तों से परे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम फ्लाइट में आते हैं, नीचे हमारे सारे रिश्तेदार हैं, हम उड़ रहे हैं, तो क्या उनसे हमारा रिश्ता है? है भी नहीं भी है कि नहीं है? ना फोन लगता है, ना बात कर सकते हैं, ना उनको याद कर सकते हैं, आप उनसे क्या हो गए? ऊपर आ गए। लेकिन संकल्पों से भले डिटैच नहीं हुए। एक एग्जाम्पल है। और बाबा कहते हैं फरिश्ते माना डबल लाइट, डबल लाइट। ये तो मैं एक दिन तो बहुत गहराई से इसके बारे में मैं सोच रही थी, बहुत सारी मुरलियां साथ में रखते हुए। सिंपल डेफिनेशन है डबल लाइट, एक तो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, दूसरा आत्मा हल्का है, है ना, लाइट दोनों अर्थ में। इसके साथ हम याद ये जोड़ेंगे कि देखिए, मुझे डबल लाइट बनना है माना मुझे आत्मा भी मानी रहना है, तभी मैं फरिश्ता बन सकता हूँ। इट इज कनेक्टेड। बिना आत्माभिमानी के हम फरिश्ता तो बन ही नहीं सकते। जब आत्माभिमानी की बातें हम सोच रहे हैं, तो मैं, आप सभी बहुत पुराने भाई बहने भी बैठे हैं, बहुत अच्छे योग करने के लक्ष्य से यहाँ आए हैं, तो मैं आपसे एक छोटे से प्रश्न पूछना चाहूंगी। जब हम योग करते हैं, योग में दो स्टेप है हमारे, एक है आत्माभिमानी बनना, एक है बाप को याद करना। सिंपल है, बाबा के शब्दों में अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। सिंपल, बाबा के योग का डेफिनेशन क्या है? अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। मुझे आप बताइए, इन दोनों में से आसान कौन सा है, अपने को आत्मा समझना या बाबा को याद करना? क्या? बाबा को याद करना। लेकिन बाबा कहते जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो योग पूरा नहीं होगा। ये बाबा को याद करना आसान क्यों है पता है? भक्ति मार्ग से हमें आदत है, उठते बैठते कोसना भी भगवान को, उल्हाना देना भी भगवान को, खुश हुए तो भी भगवान को, रोए तो भी भगवान को, हम भगवान को साथ में रखते हैं, लेकिन आत्माभिमानी नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा योग नहीं रहा है ना। भगवान को भले हम याद करते थे, अभी अभी जब हम पॉइंट्स मतलब मुरलियां पढ़ रहे थे, एक शायद जून महीने की मुरली है, शायद ऐसे याद आता है, बहुत सुंदर पॉइंट्स आकार मुरली में आई। बाबा को याद करना ही आत्माभिमानी बनना है। वो डेफिनेशन इतना कंफ्यूज कर दिया मुझे, बाबा को याद करना ही आत्माभिमानी बनना है बाबा ने कहा है। क्लास में हमने वर्कशॉप भी कराई, आपका चिंतन क्या है? देखिए, सिंपल इसमें क्या अर्थ है, वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है, इस तरफ चलेंगे तो एक घंटा और चला जाएगा हमारा, लेकिन सिंपली बाबा क्या कहते हैं, अगर आत्माभिमानी आप नहीं है तो जो बाबा को याद कर रहे हो वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ याद तभी हो सकता है जब आप आत्माभिमानी रहोगे। जब आत्माभिमानी रहोगे तब दुनिया की यादें भूल जाती है, बाबा की यादें रह जाती है। माना याद माना क्या हुआ, याद का बेसिक भी वही है, याद का फ्रूट भी वही है, याद का लक्ष्य भी वही है कि मुझे आत्माभिमानी बनना है ना। जैसे कि हम लौकिक वालों को मैनेजमेंट कोर्सेज कराते तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं उनको आत्माभिमानी बनने का, आप सभी को पता है। कुछ लोग जो आप लोग कुर्सी पे बैठे हो है ना, उसका एग्जाम्पल नहीं देते हम, जो कुर्सी पे भाई बैठे हैं, भाइयों में या माताओं में जो भी है, कुर्सी उठाने की ताकत है कि नहीं है बताइए? जो कुर्सी पे बैठे हैं, सोफे की बात नहीं कर रही हूं मैं, कुर्सी की कर रही हूं, है ना। अच्छा, बैठे बैठे कुर्सी उठाइए जरा देखेंगे, बैठे बैठे कुर्सी पे कुर्सी उठाइए, इज इट पॉसिबल, हो सकता है? नहीं। तो कुर्सी उठाने की सहज विधि क्या है? हाँ आप उठ जाओ, आप उठ जाओ तो एक हाथ से आप कुर्सी उठा सकते, बस यही तो योग है। लौकिक वालों को हम यही कहते हैं कि आप डिटैचमेंट फील करो तब आप बहुत हल्के हो जाओगे, सब समस्या का समाधान वहीं से शुरू होगा, है ना। तो क्या हम इसको इतनी आसानी से कर रहे हैं? इसलिए हल्का होना, लाइट, डबल लाइट का मतलब क्या है कि हर जो भी काम शुरू करे आत्माभिमानी स्थिति से शुरू करे, भले वो बात करना हो, खाना खाना हो, योग लगाने के लिए ही नहीं, बैठकर योग करने के समय ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, नहीं, जो भी काम हम करें, काम से पहले हम याद करें करने वाला मैं आत्मा हूं और शरीर से मैं अलग हूं। इस अभ्यास से हम बहुत जल्दी जो लक्ष्य हमारा है उस तक पहुंच सकते हैं। तो इसी रास्ते चलते उड़ना है। फरिश्ता माना क्या है? बचपन में क्या सिखाते थे कि कोई गंधर्व लोक है जहां पर पंखों वाली परियां रहती है, सुनाया था ना, सुनाते थे, पंखों वाली परियां रहती है, गंधर्व लोक है, वहां से वो हिमालय में आते हैं खेलने कूदने, वहां पर सरोवर में, मानस सरोवर में नहाते हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां बचपन में हम सुने। तो एक कहानी ये भी सुने थे कि एक परी आई, वो नहाने के लिए पंख तोड़ के रख के सरोवर में गई, तो कोई व्यक्ति आया, वो पंख क्या कर लिया उसने, चुरा लिया, तो बिचारी उड़ नहीं सकी, जब तक पंख नहीं मिले उसको इस मनुष्य लोक में रहना पड़ा। बाद में बहुत मेहनत के बाद उसको उसके पंख मिलते हैं, बाद में वो अपने लोक लौटती है। ये कहानी है ना, आप सभी ने सुना होगा। ये किसकी कहानी है? किसकी है? हमारी है ना। हम लोग अपने पंख को बैठे जिसके कारण हम उड़ नहीं सके, तो वो पंख बाबा ने हमें दिए, मिला है ना, या अभी भी कहां रख के भूल जाते हो? ऐसे होता है, दो पंख, एक पंख से उड़ नहीं सकेंगे, पंख कितने चाहिए? कौन से पंख दिए बाबा ने? याद और सेवा, बाबा ने कहा याद और सेवा का पंख है, सेवा भी चाहिए। एक मुरली में बाबा ज्ञान योग के पंख भी कहे हैं, बाबा ने कहा है ज्ञान योग भी पंख है। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि याद और सेवा भी पंख है आपके। अभी हम थोड़ा सा इन दोनों सब्जेक्ट को, दोनों पंख मिले हैं हमको, समझो चारों मिलके चार दो पंख बने, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। याद और सेवा एक तरफ है, ज्ञान और धारणा एक तरफ है, चार सब्जेक्ट से हमको दो पंख मिले। अभी दो दिन पहले बाबा ने बताया, याद जैसे नौधा भक्ति करते हैं वैसे नौधा याद होना चाहिए, याद है बाबा ने कहा अभी शायद दो दिन ही पहले, जैसे नौधा भक्ति करते हैं, नौधा भक्ति कोई बता सकते हैं कौन सी है? हाँ मीरा ने किया, बहुत सारे भक्त ऐसे नौविधा भक्ति करने वाले मिलते हैं, लेकिन नौ धा भक्ति के स्टेप्स क्या है? हाँ जी, कीर्तन, कीर्तन, भजन, पूजन, वंदन, समर्पण लास्ट है, पाद सेवन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। कीर्तन पहला है, श्रवण आप वहां से छूट गए, पहला है श्रवण माना सुनना, दूसरा है कीर्तन दूसरों को सुनाना, कीर्तन बोलते भजन बोलते, लेकिन भजन से यूजफुल शब्द है कीर्तन। उसके बाद है स्मरण, स्मरण के बाद है अर्चन या पूजन, बाद में है वंदन, पाद सेवन, दास्य, सख्य, लास्ट है आत्मनिवेदन या समर्पण। ये भक्ति के नौ स्टेप्स हैं। भक्ति भी कहती है पहले सुनने से शुरू होता है, बाद में समर्पण में अंत होता है। तो याद में भी क्या होता है, पहले हम याद करते हैं, धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे याद रह जाता है, चौथा है फिर याद में समा जाते हैं। याद के क्या स्टेप्स हैं? पहले याद करते हैं ना बहुत मुश्किल से, मैं आत्मा हूं लिखते हैं, समान लिखते हैं, पता नहीं कितना सर्कस करते हैं हम, क्या करने कैसे भी बाबा को याद करें, नहीं करते, नहीं नहीं आते हैं तो याद करने का प्रयास करते हैं। सेकेंड स्टेप में जैसे हम आदतें बन जाते हैं, याद आना शुरू हो जाता है। समझो आप रोज क्लास जाते हो, रोज अमृत वेला करते हो, एक दिन आप नहीं उठे, पूरी दिन गिल्ट नहीं हो गया आपको, अरे मैंने मिस कर दिया। समझो क्लास के समय रोज मुरली में जाते हो, कोई रिश्तेदार आ गया, आप जा नहीं सके उस दिन, तो आपका मन दिल सब कहाँ रहता है, कहाँ, सेंटर में, और आप घर में बैठे रहते और जाना था आज नहीं गए। मतलब ये अपने आप याद आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे याद भूलता ही नहीं है, याद रह जाता है। और लास्ट में याद में हम समा जाते हैं, ये याद हमें उड़ाता है ना, हम याद करते, समझो आपको पता है ना जब फ्लाइट में फ्यूल भरते हैं, रिफाइंड पेट्रोल भरते हैं, थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम है तो फ्लाइट बीच में कहीं ब्लॉक हो गया है तो बहुत मुश्किल होगा, गाड़ी तो नहीं है ना, रोक ली, रिपेयरिंग कर ली। इसी तरह संगम युग में भी बाबा बार बार कहते हैं पुरुषार्थ की पटरी पे चलते चलते उड़ना है हमें, फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता बनने के लिए हमें बहुत हल्का रहना है, सिर पे बहुत वजन रखे हुए है, रखे कि नहीं रखे, रखे कि खाली किए है पांडव भवन आके। एक छोटा सा पेपर है मेरे हाथ में है, वजन ज्यादा नहीं है इसका, अगर इस पेपर को ऐसे पकड़ के रखो दर्द होगा नहीं होगा? एक घंटा अगर ऐसे पकड़ के रखो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों, इसका वजन बढ़ गया, प्रॉब्लम क्या है? एक ही पोजीशन में एक छोटे से पेपर को पकड़ने रखने से भी यहां दर्द होता है, तो सालों से हम एक छोटे से प्रॉब्लम को यहां रख के खड़े हैं, तो क्या इसका असर पुरुषार्थ पे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, आप रोज मुरली सुनते हो, रोज दीदी प्यार से मुरली सुनाती है, देखिए आप लोग समय पे आए ना आए, लेकिन दीदियों को तो समय पे आना ही है, मुरली सुनानी ही है, कोई आए ना आए वो मुरली सुनाती है, आप प्यार से मुरली सुनते हो, मुरली किसकी है? बाबा की है। बाबा इतनी ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी बात है, अभी अभी बाबा ने एक मुरली चलाई जिसमें स्वीटेस्ट 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 हमने काउंट किया, 26 बार बाबा ने स्वीटेस्ट बोला था उस मुरली में, स्वीट स्वीटेस्ट 26 बार बाबा ने रिपीट किया था। इतनी अच्छी मुरली सुनी आप, बाहर निकल रहे थे उस दिन, आप बारिश हो रही थी तो आप छाता अंदर ले आए थे, तो खिड़की पे रखे थे, वहां पर पर्दा गीला हो गया था, तो दीदी ने कहा कितने बार कहा है भाई गीले छाता अंदर नहीं लाओ, पर्दे खराब हो जाते हैं, सुना इतने बार सुनाने पर भी नहीं सुनते हो, थोड़ा सा दीदी ने क्या किया आपको डांटा, ठीक है, आप एक घंटा मुरली सुने थे, दीदी ने एक बात पर एक सेंटेंस में आपको डांटा, आपको पूरा दिन क्या याद रहेगा बताओ मुझे, आपको पूरा दिन क्या याद रहेगा, दीदी की वो छोटी सी डांट या एक घंटे जो भगवान की मुरली सुनी, वो बातें कौन सी बात याद रहती है, सच बताना कौन सी बातें याद रहती है, कौन सी बातें? और भी छोड़िए, आप लोग कई तो 20 साल से 25 साल से मुरली सुनते होंगे, रोज मुरली सुनते हैं, किसी को याद है एक महीने पहले की मुरली में बाबा ने क्या कही थी, आज 13 है, 13 जून की मुरली में बाबा ने क्या कही थी, याद है किसी को? नहीं। लेकिन एक साल पहले दीदी ने कभी आपको डांटा था, वो याद है कि नहीं है बताइए, वो याद है कि नहीं है? तो बात क्या है, बात हमारी क्या है, जन्म जन्मांतर से मनुष्यों की बातों को याद रखना इसके आदत ही बन गए हैं। हम क्या बन गए? भगवान की बातें एक ही बार कल्प में सुनने को मिलता है, इतना महत्व होने पर भी हम आदत से इतने मजबूर हैं कि मनुष्यों की बातें भूलती नहीं है और भगवान की बातें याद नहीं रहती है। तो उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? अभी क्या करना पड़ेगा? कोई मनुष्य उड़ा नहीं सकता, हमें उड़ा सकता है? तो हमारे सिर पे जो बोझ है ना, उसे उतारना पड़ेगा। ठीक है, हमारी गलती थी, दीदी ने, बड़ों ने या कोई सीनियर हमारे जैसे पुरुषार्थी ने हमें कुछ कह दिया, तो ठीक है ना, अगर गलती है तो सुधार लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, लेकिन सिर पे बोझ लेके नहीं घूमेंगे। जब ये बोझ की बात आती है ना, एक बहुत सुंदर घटना याद आती है मुझे। हम लोग पहले कर्नाटक से मधुबन आते थे, मुंबई होके ही आना पड़ता था हम लोगों को, और उन दिनों ट्रेन बहुत कम थे, तो मुंबई सवेरे आते थे हम लोग, शाम तक हम मुंबई में वेट करना था हमको 12 आवर्स। सवेरे 6 बजे उतरते थे, शाम 6 बजे की ट्रेन रहती थी, तो पूरे दिन तो वही बैठना है हमको। और मुंबई में भी एक जगह उतरो, वहां से दूसरे स्टेशन जाना पड़ता था अहमदाबाद की ट्रेन के लिए। हम लोग वहां की लोकल ट्रेन लेते थे, सवेरे सवेरे लोकल ट्रेन में रश कम रहता है। एक बार हम टीचर्स आ रही थी, कुछ 25 टीचर्स थे, ऐसे बारिश का मौसम था भट्टी के लिए, तो हम सभी लेडीज डिब्बे में चढ़ गए लोकल में। सवेरे रश कम है, थोड़े 15-20 माताएं जो नौकरी करने वाली थी वो थी डिब्बे में, और ये मछुआर माताएं होती है ना, वो खड़ी थी कुछ, जो सवेरे सवेरे मछली लेके बेचने के लिए निकलती है, सिर्फ पे टोकरी लेके खड़ी थी। आपको पता है मच्छी से बहुत अच्छा सुगंध आता है, और आपको पता है जो ये मछुआर माताएं होती हैं, उनके सामने अगर आप नाक बंद करेंगे तो उनको बहुत गुस्सा आता है, वो है ना, मछली आपके नाक में घुसाती है ऐसे, उनको बहुत गुस्सा आता है। हम लोग चुपचाप खड़े थे, तो एक माता, मतलब डेली ट्रैवल करने वाली, जॉब करने वाली, उसने मराठी में उस मछुआर, 2-4 माताएं, आपको पता है मछुआर माताएं बहुत हट्टी कट्टी होती है, और वो भी मराठी माताएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। फिर एक दूसरी बहन ने क्या, माता ताई, मराठी में ताई बोलते हैं, ताई ये टोकरी सिर पे लेके क्यों खड़ी है, नीचे रख दे, क्योंकि पानी भी टपक रहा था, क्यों वजन लेके खड़ी है, नीचे रख देना। तो ताई, वो बाई बोलती है, अरे ताई तेरे को इतना भी पता नहीं है, ये टोकरी मैं नीचे रखूंगी तो ट्रेन को वजन ज्यादा नहीं होगा क्या? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? सिर पे रखो या नीचे रखो, उठाता कौन है? वजन किसके पास है? ट्रेन के ही पास। नीचे रखने से तेरा तो वजन कम होगा ना। ऐसे हम लोग भी क्या सोचते, बेचारा बाबा पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लिए बैठा है, हम अपनी थोड़ी सी बोझ उसको दे देंगे तो बेचारे का बोझ बढ़ेगा, इसीलिए हम सोच के अपना बोझ अपने सिर पे लेके घूमते रहे। ऐसे ही होता है ना, जिसके कारण हम उड़ नहीं सकते। बाबा ऊंट पंछी की उदाहरण देता है ना, उड़ो तो कहता है मैं ऊंट हूं, और बोझ उठाओ तो कहता है मैं पंछी हूं। माना अगर फरिश्ता बनना है तो कभी बहाना नहीं करना। सोचो हम बहाना किससे कर रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप सोचो किसको मूर्ख बना रहे हैं? खुद को। दूसरे तो हंसेंगे और चुप हो जाएंगे, लेकिन हम खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं, और हम ही पीछे रह रहे हैं, किसी को इससे नष्ट होने वाला तो नहीं है। आगे एक सीट खाली है, आप नहीं बैठेंगे, कोई आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं कि सीट खाली रह जाएगी। संगम युग की यह विशेषता है, इसलिए फरिश्ता बनने के लिए हमारे याद के सब्जेक्ट को बहुत 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 मजबूत बनाना जरूरी है। तो कुछ सालों से, कुछ समझो 5-6 साल से, मैंने एक अभ्यास की विधि अपनाई है जो याद करना बहुत आसान हो रहा है मेरे लिए। नहीं तो क्या होता था, बहुत सेवा के भाग दौड़ में हम बहुत थक भी जाते थे, तो बैठ के तो कई बार टाइम नहीं निकाल सकते, अमृत वेला ही हमारा रहता, उसके बाद तो हम अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं सकते, कोई आ गया कुछ हो गया, कब तो एक एक बार दो दो तीन तीन चार चार पता नहीं कितने प्रोग्राम्स हो जाते। फिर भी मैंने सोचा इसके लिए तो हम नहीं आए हैं, हम आए किसके लिए, उसको हम छोड़ के क्या कर रहे हैं, तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसके लिए एक छोटी सी विधि अपनाए जो अब भी मैं कर रही हूं, शायद आपको भी कुछ लाभ हो, वो ये है रोज मुरली सुनते समय फोकस हो पूरी मुरली पर, अटेंशन से सुने मुरली। वैसे भी हम दुनिया के लड़कों को यूथ्स को क्या सिखाते हैं कि क्लासरूम कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, आप कितना भी पढ़ो उसका फर्क नहीं पड़ता, आप क्लासरूम में कितना कॉन्सेंट्रेट करते हो, एकाग्र रहते हो क्लासरूम में, वो छप जाता है, जो टीचर सिखाता है ना वो छप जाता है, यही है ना, ये सच्चाई है कि नहीं है। हम स्कूल में जो क्लासरूम में सुने अब तक हम नहीं भूले, उसके बाद हमने हजारों बुक पढ़ी होगी लेकिन वो पूरा कोई याद नहीं है, लेकिन क्लासरूम में जो टेक्स्ट सिखाया गया था हमें वो हमें बिल्कुल याद है। तो मुरली के ऊपर भी इतना फोकस हमारा हो, और उस फोकस को आगे बनाए रखने के लिए मैंने जो विधि अपनाई, जो मुरली सुनती हूँ, समझो पढ़ती भी हूँ सुनती भी हूँ, उसको मैं रिपीट करती हूँ बाबा के साथ। कैसे? बाबा के साथ सुनती हूँ मुरली तो बाबा मेरा टीचर है, मैं रिपीट करती हूँ तो मेरा बाबा मेरा माँ है। स्कूल से बच्चे आते हैं तो किसके सामने सारा अपना खोल के बैठते हैं, किसके सामने, बक्सा खोल के, मम्मा आज स्कूल में ना ए फॉर एप्पल सिखाया, बी फॉर बॉल सिखाया, सी फॉर कैट सिखाया, सिखाते बोलते नहीं है, मम्मा को पता होता है कि नहीं होता है, फिर भी मम्मा पूछती और क्या सिखाया और क्या सिखाया, और बच्चा और बोलता जाता है, यही होता है ना। बस बाबा मेरा मम्मा है, माँ है, मैं बाबा आज मेरे टीचर शिव बाबा ने ना आज मुझे पोता बनाया, सदगुरु बाबा ने मुझे अपना पोता बनाया और पूरा वर्षा मेरे नाम कर दिया, कितना खुश हुई बाबा मैं आज, बस शुरू हो गई मैं पूरी जो मुरली है सेंटेंस बाय सेंटेंस मैं रिपीट करती हूँ किसके साथ। अच्छा ठीक है, कोई बीच में आ गया, फोन आ गया, वहां रुक गई मैं, जैसे पूरा हो गया मेरा काम, फिर जहां से रुकी हूँ वहां से मैं फिर, मतलब शाम तक पूरी मुरली मैं अपने मम्मा शिव बाबा के सामने क्या करती हूँ, रिपीट करती हूँ। इससे बहुत हल्का भी रहती हूँ, और इसके कारण क्या होता है, बाबा साथ रहता है, मुरली साथ रहती है, आपको पता है ना मुरली इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, और कुछ नहीं है, भगवान क्या है वो मुरली हमें बताता है, हमने भगवान को देखा नहीं है लेकिन हमने मुरली के द्वारा भगवान को देखा है कि नहीं है, बताइए। केवल हमने इस विश्वास से नहीं माना कि बाबा ज्योति स्वरूप है, किसी ने कह दिया हमने मान लिया, नहीं, जैसे मुरली सुनते गए बाबा का विशाल रूप विश्व रूप हमारे सामने खुलता गया। अभी भी हम अचंभे हो जाते हैं बाबा की मुरली सुनते, अरे ऐसा भी है, इसलिए बाबा की पर्सनालिटी बाबा की मुरली है, और बाबा की मुरली हम बाबा को ही सुनाते, वंडरफुल है, हमारा बाबा इतना प्यार से सुनता जिससे मेरी याद तो पक्की हो ही गई, मेरी स्थिति भी बहुत अच्छी हो रही है। मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, एक मेथड है आप भी करो, एक थियरी नहीं बता रही हूँ, प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई किया, इससे बहुत फायदा हुआ। आप कहाँ भी बैठे हो, कभी वेट करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, आप मुरली रिपीट करते रहो मन में, हाथ में कुछ होने की जरूरत नहीं है, बस एक ही है, सवेरे मुरली अच्छी तरह से फोकस दो के सुनना पड़ेगा, बाद में उसको रिपीट करो बाबा से। और नेक्स्ट है बैलेंस के लिए सेवा, फरिश्ता बनने के लिए इम्पोर्टेंट है सेवा। सेवा माना क्या है, मेरे नजर में सेवा माना देना, मैं नहीं कहती कि सेवा माना हम इतनों को अपना प्रजा बना दिया, ठीक है वो सब बाबा ने हमें बताया, लेकिन मेरे मतलब से सेवा माना देना। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, सेवा माना देना। तीन रूप है, दानी, महादानी और वरदानी। जो हमारे पास है वो देते रहना दान है, जो सामने वाले को चाहिए वो देना महादान है,
सामने वाले को जो जरूरत है ऐसा वर देना वरदान है। तीनों में फर्क है। सामने वाले को क्या चाहिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास जो है वही दूंगी मैं, ठीक है, वो दान है, हर कोई कर सकता है उसे। सेकेंड स्टेप में देना है महादान। देखिए जरूरत और चाहिए में बहुत फर्क है। जो चाहिए उसको देते जाओ, फिर हम और सूक्ष्म हो गए, वरदानी बन गए कि जरूरत क्या है सामने वाले को वही देना। तो सोचो जब सामने वाले को जरूरत पूर्ण करना है तो मेरे पास भी स्टॉक रखना जरूरी है। जब ऐसे सेवा देना शुरू करते, सेवा तो करना ही, हमको बैठना नहीं है, अंत तक सेवा करते रहेंगे, लेकिन हम ये याद रखेंगे ये हमारी बैलेंस है, उड़ने के पंख है हमारे, तो हम सेवा कर रहे हैं, माना घमंड की कोई बात नहीं है, जो बाबा ने दिया मैं उसे सामने वाले को दे रही हूँ, अपना तो कुछ नहीं ले रही हूँ, दे रही हूँ क्या। जब भी मैं सेवा करती तो मैं वही सोचती हूँ भगवान ने मुझे इतना भरपूर किया है, वो भगवान जो भरपूरता मुझे दी है वो मैं दे रही हूँ, बस अपना कुछ नहीं है, आई एम द मीडियम। बाबा मेरा भाग्य बना रहा है, खुद ही दे सकता था लेकिन बाबा ने क्या किया, भाग्य मेरा बनना था तो मुझे बीच में बिठा दिया, बस देने वाला कौन है, थ्रू मी बाबा इज ट्रांसफरिंग। ये जब हमको याद रहता है ना तो हम बहुत हल्के रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, कोई अटेंशन से या टेंशन भी नहीं होता है, बहुत घमंड भी नहीं आता है सेवा का, तब हम उड़ सकते हैं, नहीं तो सेवा भी हमें रोक देता है। ठीक है, ये हो सकता है, हम कर सकते हैं। हम ये नहीं बिचारी आत्मा को, अरे बिचारी आत्मा नहीं सोचो, भगवान का काम है भगवान के बच्चों को कुछ देना, वो मुझे चुना है देने के लिए, कोई बिचारा नहीं है इस दुनिया में, सब भगवान के बच्चे हैं कि नहीं है बताओ, सब भगवान के बच्चे हैं। तो बस इसको ही जब हम याद रखते हैं तो लास्ट में फरिश्ता बनना ये विधि है, इम्पोर्टेंट है हमको। देखिए हम क्या करते हैं, मुझे गुस्सा छोड़ना है, सभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, जब हम काउंसलिंग कराते हैं, लाइव फोन इन प्रोग्राम करते हैं, ज्यादातर प्रश्न इसी में आता है, दीदी मुझे बहुत गुस्सा आता है, छोड़ने की विधि बताओ। थॉट्स में एक होता है पॉजिटिव थॉट्स, एक होता है एलिवेटेड थॉट्स, आप सभी को पता है। पॉजिटिव थॉट्स से आगे है एलिवेटेड थॉट्स। ऐसे क्या है एलिवेटेड, माने क्या है, मुझे गुस्सा छोड़ना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एलिवेटेड थॉट कहता है मुझे शांत रहना है, गुस्सा छोड़ना नहीं है, मुझे क्या करना है, बस मुझे शांत रहना है, मुझे प्यार से पेश आना है, अपने आप गुस्सा छूट जाएगा। हमने क्या गलत रास्ता चुना, गुस्सा छोड़ना है मुझे, गुस्सा छोड़ना है मुझे, क्रोध छोड़ना है मुझे, क्रोध छोड़ना है मुझे, क्रोध छोड़ना है, बार बार किसको याद किया, याद किया ना, तो उसके बदले क्या करें हम, मुझे जो बाबा ने सिखाया, मैं नहीं कह रही हूँ बाबा ने कभी कहा है क्या मैं अशांत आत्मा नहीं हूँ, मैं क्रोधित आत्मा नहीं हूँ, ऐसे याद करो, ऐसे बाबा ने कहा है कभी, बाबा ने क्या कहा है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जो बनना है जो है ना, है भी वही हम, बनना भी वही है, तो उसी को याद करो, दिस इज एलिवेटेड थॉट्स। आज दुनिया में इसका तो जैसे कि भवंडर मतलब तूफान है, सभी जो ट्रेनर्स है ना, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स इसी शब्द को लेके घूम रहे, क्रिएट एलिवेटेड थॉट्स, क्रिएट एलिवेटेड थॉट्स, बट हाउ टू क्रिएट एलिवेटेड थॉट्स, कैसे विचार हम अपने में भरे या रखे, बहुत सहज विधि, बाबा की मुरली हमें सिखाती है, बाबा हमें कहता है कि मुझे बलवान बनना है। देखिए बाबा ने कभी मुरली में कहा कि माया को हराओ, बाबा ने क्या शब्द यूज किया, माया जीत बनना, देखो कितने सुंदर, जब बैठ के आप सोचोगे कि टोटल मुरली इज एलिवेटेड, बाबा ने कहा मुझे माया जीत बनना है, मुझे माया जीत बनना है, बाबा ने ये नहीं कहा कि माया को हराना है, कोई भी स्पर्धा है कोई भी कंपटीशन में मुझे जीतना है, ये मेरा लक्ष्य है, फलाने को हराना मेरा लक्ष्य नहीं है। बस इन्हीं विचारों से हम ऊपर बनते हैं। विचार वही है, मतलब मीनिंग वही है, लेकिन बोलने का तरीका, सोचने का तरीका और विजुअलाइजेशन का तरीका बदल जाता है। आप सोचो, अगर आप सोचते हो कि मुझे क्रोध छोड़ना है तो आपके सामने दृश्य क्या आता है? क्रोध का आता है। अगर आप सोचते हो मुझे शांत रहना है तो कैसा दृश्य आता है? फर्क है कि नहीं है? मुझे फरिश्ता बनना है, बस हमारे सामने ये विजुअलाइजेशन है। फरिश्ता बनना है माना मुझे उड़ना है, उड़ना है माना देखो फ्लाइट उड़ता है, आपने देखा है, अनुभव भी किया, पहले चलता है फिर दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते फिर टेक ऑफ करता है, फिर बैलेंस होके उड़ना शुरू करता है, है कि नहीं? तो मुझे भी फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने मुझे पहले चलना सिखाया, चलना, चढ़ना सिखाया बाबा ने, जैसे फ्लाइट ऐसे चढ़ता है ना, चढ़ते 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 एकदम क्या सिखाया बाबा ने? उड़ना सिखाया। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, जब फ्लाइट उड़ता है, उड़ान भरता है, तो ग्रेविटेशन पावर के अपोजिट जाना पड़ता है फ्लाइट को, है कि नहीं है? नहीं तो धरती खींचता है। ऐसे हमें भी फरिश्ता बनना है तो कर्म बंधन के आकर्षण से, अभी खींचता कौन है, है ना? इसलिए कर्म बंधन मुक्त बनना है मुझे। क्या बनना है? हाँ, कर्म बंधन से मुक्त बनना है। कर्म बंधन से मुक्त बनना कहो या दौड़ना कहो, फास्ट जाना है, तो लास्ट में हम यही याद करेंगे। मैं वैसे भी कहा है बहन ने, मैं भगवत गीता मेरा एक पैशन है, तो भगवत गीता में मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है एक बात, गीता का श्लोक है, अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, ऐसे ऐसे लोगों का योग क्षेम की जिम्मेवारी मेरी है, जो है उसे संभालना और जो बनना है वैसे बनाना, जिसको योगक्षेम कहते हैं, ये दोनों जिम्मेवारी मेरी है, भगवान कहता है। और कैसे मुझे चिंतन करना है? सततम माम स्मरते नित्यशा, रोज रोज मुझे याद करो, तभी तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तो अल्टीमेटली फरिश्ता बनने का क्या विधि है? क्या विधि है? एक तो अपने को हल्का रखना है, बाबा को याद करना है, याद करने की सहज विधि अपनानी है, और लक्ष्य रखना है मुझे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता माना। फर्श से, देह से जुड़े नहीं हम, रहे भले देह में लेकिन कैसे रहे? जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, भले वैसे बैठे कुर्सी पे है, लेकिन उसको हम चिपक नहीं गए हैं। जब भी चाहे हम उठ सकते कि नहीं उठ सकते? उठ सकते हैं ना, बस शरीर में भी ऐसे ही रहे हम। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। अल्टीमेटली हम ये, मैं यही कहूंगी कि बाबा को याद करना ही आत्माभिमानी बनना है, और याद ही वो साधन है जो हमें हल्का बनाता है, और उसी के आधार से हम फरिश्ता बन सकते हैं। तभी हम विघ्नजीत, विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर और विघ्न विनाशक बन सकते हैं। आप सोचना भट्टी में, चारों अलग अलग मीनिंग है इन चारों का। विघ्नजीत, विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर और विघ्न विनाशक। विघ्नजीत, विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर और विघ्न विनाशक, ये सारे गणेश जी के अलग अलग नाम है जो हम बच्चों पे लगते हैं। इसके अलग अलग मीनिंग है, अल्टीमेटली ये विघ्न विनाशक है, फिर भी इसके अलग बहुत अच्छे मीनिंग है। आप थोड़ा सा इसकी गहराई में जरूर जाइएगा और जरूर सूंड वाला गणेश जरूर बनिएगा। सूंड वाला मना किया पता है? आप कभी हाथी पे बैठे? अरे बैठे होंगे, आसाम वाले हाथी पे कैसे बैठे नहीं है। हम जब गए थे गुवाहाटी से आगे कंचनजुंगा, तो हम हाथी पे बैठे थे, वहां गेंडा देखने गए थे, काजीरंगा हाथी पे बैठे थे। तभी मैं लास्ट में वो एक्सपीरियंस सुना के एंड करूंगी। हम हाथी पे बैठे थे, बहुत दलदल में हाथी जा रही थी, इतना दलदल था। तो हाथी चलाने वाला कह रहा था, दीदी आपके सफेद कपड़े तो गए, ठीक है, वो हाथी यूं नहीं जाता है ना, खेलते खेलते जाता है। तो क्या करता है, दलदल में डुबोता है अपना सूंड, पानी लेता है और फुहारा करता है, ऐसे करता जा रहा था। तो एक बार उसने क्या किया, पानी लिया पीछे किया, तो भाई तो कह रहा था बस अब आपको तो नहाना है। पूरा पानी हमारे ऊपर गिरा, लेकिन मैं सच कहती हूं, जो पानी की छींटे गिरे ना, उसमें थोड़ी भी गंदगी नहीं थी, इतना स्वच्छ पानी था। अब भी मैं सच में, हमारे हाथ में उस समय ये फोन्स भी नहीं थे, फोटो भी हम नहीं लिए, लेकिन वो दिन याद है मुझे। इसका मतलब क्या है, हाथी जब दलदल में अपना सूंड डालता है ना, दलदल से भी स्वच्छ पानी लेता है। क्या लेता है, एक थोड़ा सा भी उसमें गंदगी नहीं, साफ पानी। इसलिए बाबा ने हमको विघ्नजीत विघ्नेश्वर बनने को कहा है कि आप भले रहो दलदल में, लो क्या है उसमें से, क्या लेना है हमको, क्या लेना है, कितना भी दलदल क्यों ना हो, हमारी इतनी अच्छी फिल्टर है। मैंने सोचा ये हाथी के सूंड में फिल्टर कितना बढ़िया होगा, है तो हमारा फिल्टर तो बाबा है, बहुत ऊंचा। तो अगर हमारा फिल्टर ठीक है तो हम अवश्य विघ्नेश्वर बनेंगे। क्या बनेंगे, तभी हम सारे बैरियर्स नीचे छोड़ के ऊपर जा सकेंगे ना। तो क्या लक्ष्य लेंगे, हमको क्या बनना है। कल भी आप अमृत वेले यहां इस एरिया में रहेंगे, आप फील करेंगे, सच में आप फील करेंगे, अगर लक्ष्य रखेंगे तो फरिश्ता जैसे बाबा हमारे पीछे पीछे खींच रहा है हमको, आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, बाबा खींच रहा है, ये महसूस तो आप जरूर करेंगे। हल्कापन, बिल्कुल कोई बोझ नहीं, उठाने वाला इतना अच्छा साथी मिला है, दे दो सारा, हल्के हो जाओ और बहुत खुश, बहुत शक्तिशाली हम रहेंगे। तभी नवधा योग जो बाबा कहते हैं, पूर्ण आत्मसमर्पण से, नहीं तो थोड़ा सा उसमें मिलावट हो जाता है, होता है ना। हम तो श्रीमत के अनुसार ही चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा, जैसे देखिए आपको एक लीटर पानी, मतलब एक लीटर दूध आप रोज लेते हो, कोई मेहमान आ गया आपको 2 लीटर चाहिए, दूध वाले को आप बोलते हो मुझे 2 लीटर चाहिए, सच में उसके पास होता नहीं है, फिर भी वो कहता है दे देता हूँ, क्या करता है फिर, तो आपका दूध थोड़ा सा क्या हो गया, उसने 2 लीटर तो मिल गया लेकिन क्वांटिटी वही रही, क्वालिटी कम हो गई। हमारा भी ऐसे होता है, हम सब बाबा के श्रीमत के पक्के हैं, लेकिन थोड़ा सा श्रीमत में मन मत क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, हम खत्म नहीं करते, लेकिन उसमें थोड़ा सा मन मत मिला देते हैं, जिसके कारण रंग तो सफेद ही रहता है और मिलावट हो जाता है। इसको कहते चलाना, क्या कहते हैं, चलाना, चलता है संगम युग में सब चलता, उठो तो भी वो चलता है, नहीं उठो तो भी चलता, मुरली सुनो तो भी चलता, नहीं सुनो तो भी चलता, आओ तो भी चलता, नहीं आओ तो भी चलता है, और लेट आओ तो भी चलता है, 10 दिन नहीं आओ तो भी चलता है, सब कुछ चलता है। चलाते 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 बाद में चिल्लाना शुरू हो जाता है, पता ही नहीं होता है। इसलिए श्रीमत में कभी श्रीमत को डाइल्यूट मत करना, श्रीमत में कुछ भी मिलावट नहीं करना, तब देखो जिंदगी की गाड़ी एकदम उड़ने शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यही अभ्यास करना, खुश रहेंगे। सौभाग्य है भगवान ने हमें चुना है, सौभाग्य है अपनी सेवा का एक अंग हमें बनाया है, सौभाग्य है भगवान जब धरती पे आए तो हमें याद किया है, ये सौभाग्य नहीं है क्या, करोड़ों में से हमको याद किया भगवान ने। तो ये सौभाग्य को गंवाए नहीं कभी, इसका हम जरूर लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। ओम शांति। हमारे सामने दीदी, बड़ी दीदी बैठी है, शील, दोनों शील दीदियां बैठी है, दोनों बड़ी है, अनुभवी है, उनके सामने आप सबको जो बाबा से हमने सीखा और सीख रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, उन अनुभवों को शब्दों में रखने का मौका दिया, इसके लिए बाबा का, सब बड़ी दीदियों का, सुने आप सभी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष हमको इतनी सुंदर पावरफुल रमणी क्लास कराने के लिए हमारे समक्ष आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है, प्रकाश पारावार। वरिष्ठों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है, प्रकाश पारावार। वरिष्ठों का देख लो।